हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही वो लोग रक्त बंधन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे थे, अभिमन्यु और तपस्या वहां पहुंच गए। उन्हें वहां देखकर सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये हमारी अंतिम बलि नहीं होती तो आज से ज्यादा खुशी हमें कभी नहीं होती। तो क्या हुआ जीजी, जो अंतिम प्रक्रिया है, ऐसा करते हैं साथ में इन दोनों को भी ले ही लेते हैं, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और कालखोर को भी बहुत खुशी मिलेगी। सुनैना ने हंसकर कहा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? जब यहाँ से निकल ही गए थे तो फिर वापस? उर्मिला ने रोते हुए कहा, आपको इस तरह मुसीबत में छोड़कर भी तो नहीं भाग सकते। हमें कभी पीठ दिखाना नहीं आया माँ, और ना ही इन लोगों की तरह पीठ पर वार करना। अभिमन्यु ने जवाब दिया, बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं, लेकिन मुसीबत आती है तब पता चलता है। सब लोग हमें गलत समझते हैं, लेकिन उस वक्त अगर मेरे तीनों रानियों ने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो आज तुम लोगों का नामो निशान नहीं होता, इस राजघराने का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये सुख संपदा नहीं होती। प्रताप सिंह ने सख्त आवाज में कहा, वो अभी भी खुद को सही ठहरा रहे थे। मैं दुआ करता हूँ कि हमें ये सब ना मिलता, कम से कम इतने सालों तक उन मासूम लड़कियों की बलि तो नहीं दी जाती, उन्हें तड़पना तो नहीं पड़ता। अभिमन्यु ने जवाब दिया, किसी को अंदाज़ा भी है कि हम तीनों कितनी तड़पी थीं? जब हमने अपना बलिदान दिया था तब हमें भी पीड़ा हुई थी, परंतु एक बार भी हमारे मन में ये नहीं आया कि हम ये क्यों कर रही हैं। हमने हमारी प्रजा और राजघराने के बारे में सोचा, परंतु तुम आजकल की पीढ़ी स्वार्थी हो गई हो, तुम्हें बस खुद की खुशियाँ दिखाई देती हैं। सुभद्रा ने गुस्से में कहा, खुशियाँ तो आपको भी आप ही की दिखाई देती है। इतने सालों से आप लोग जिंदा हैं, फिर भी आपका मन नहीं भरा। आप चाहते तो अपनी बलि देकर सबको इस बीमारी से निजात दिला सकते थे, लेकिन आपका स्वार्थ, आपके स्वार्थ ने आपको ये करने से रोका। ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहना, सुख संपत्ति, एक दूसरे का साथ, इस लालच ने आपको अंधा कर दिया और आप लोग बेगुनाह लोगों की जान लेते गए। अभिमन्यु भी उस वक्त काफी गुस्से में था, उसने उसी लहजे में उन्हें जवाब दिया। वो लोग बातों में उलझे थे, जहां प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियां खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रही थीं, तो अभिमन्यु अपनी बातों के जरिए उन्हें जवाब दे रहा था। इस बीच तपस्या ने मौका देखा और उसने वहां रखी मशाल को उठाकर वहां आग लगा दी। उसने सबसे पहले कालखोर की मूर्ति जलाई और उसके बाद घास फूस से बनी उस झोपड़ी को आग लगा दी। जैसे ही उन लोगों को आग महसूस हुई, सुभद्रा गुस्से में तपस्या की तरफ बढ़ी और उसे हवा में उछालकर दूर पटक दिया। तुम सब ऐसा कर भी कैसे सकते हो, उसने गुस्से में कहा, जैसा आपने किया वैसा ही हम कर रहे हैं। धोखे से आप लोग हमें यहाँ लेकर आए थे तो उसी धोखे से आपको जवाब मिल रहा है, तपस्या ने कहा। खुद को आग से बचाने के लिए सब बाहर की तरफ भागने लगे, प्रताप सिंह उनमें सबसे आगे थे। कुछ ही देर में आग वहाँ फैल गई। अग्नि के आगे सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की शक्तियाँ कमजोर हो जाती थीं, वो तीनों उसमें फंस गई थीं। सुभद्रा, सुनैना, सुकृति, प्रताप सिंह जोर से चिल्लाए, वो उन तीनों रानियों के साथ अंदर जाना चाहते थे, परंतु पार्थ और गौरव ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। देखते ही देखते तीनों रानियां आग में जल गईं और इसी के साथ उनका किया काला जादू टूट गया। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, प्रताप सिंह गुस्से में चिल्लाए। धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तित होने लगा। पहले वो एक जवान आदमी दिख रहे थे, वहीं धीरे धीरे वो एक हड्डियों के ढांचे में बदल गए, जिनके ऊपर त्वचा की एक पतली परत थी। वो काफी कमजोर और निढाल होकर उस जगह पर पड़े थे। तीनों रानियों का किया काला जादू टूटते ही ऊपर महल की दीवारें टूटने लगी। हेजल पहले ही सब घर वालों को वहां से बाहर ले जा चुकी थी। अभिमन्यु और तपस्या जिस जगह पर मौजूद थे, वो भी उन रानियों के जादू से मुक्त हो चुकी थी। वो सभी लोग प्रतापगढ़ की सीमा से दूर एक सुनसान जगह पर खड़े थे। ये वही जगह थी जहां कभी काल कालखोर मंदिर हुआ करता था। उन्होंने उस जगह को अपने जादू से बांधकर लोगों के लिए उसे अदृश्य बना दिया था। उसका सीधा रास्ता उनके महल से खुलता था, जहां से तीनों रानियां पूजा करने अक्सर जाया करती थीं। सब कुछ ठीक होते ही उर्मिला ने दौड़कर अभिमन्यु को गले लगाया। सब एक दूसरे को संभालने में लगे थे। जैसे ही वहां लगी आग शांत हुई, तपस्या ने उस पर अपने साथ लाया गंगाजल वहां डाल दिया। तीनों रानियों की राख अब वहां से गायब हो चुकी थी। वो लोग काफी देर से वहां मौजूद थे, इसलिए महल की उन्हें कोई खबर नहीं थी। जब सब कुछ शांत हो गया था, तब तक सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी ने अपनी दस्तक दे दी थी। प्रताप सिंह अभी भी जमीन पर निढाल गिरे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखकर कहा, हमें नहीं लगता कि अब इन्हें कोई और सजा की जरूरत है। इन्हें अपने किए की सजा खुद ब खुद मिल रही है। हाँ, सही कहा, परंतु इन्हें ऐसे छोड़ना भी सही नहीं होगा, उर्मिला ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने उनकी बात पर हामी भरी। प्रताप सिंह अपना शरीर त्याग चुके थे। वो गांव वालों की मदद से उनका शरीर लेकर महल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें महल के टूटने का पता चला। बाकी घर वाले वहीं महल के आगे मौजूद थे। एक ही रात में कितना कुछ हो गया। पहले खुशियों ने दस्तक दी, जहां तुम दोनों की शादी हुई तो अब दादा साहब की मौत हो गई, साथ ही महल भी गिर गया। सब कुछ एक सपने की तरह लगता है। गांव में किसी भी घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लगता है सिर्फ भूकंप यहीं पर आया था, दीपक सिंह ने कहा। ये महल बहुत कमजोर और पुराना था, इतना कि एक छोटा भूकंप का झटका भी सहन नहीं कर पाया, रविंद्र प्रताप ने कहा। महल के गिरने की वजह वो भूकंप को मान रहे थे। अभिमन्यु ने इधर उधर देखा कि सभी परिवार वाले ठीक हैं या नहीं। सभी वहां पर मौजूद थे सिवाय रावी के। उसने घबराकर पूछा, रावी कहाँ है? वो भी तो महल में ही थी। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा वो तुम दोनों की शादी से अपसेट होगी, और हेज़ल ने ज्यादा कुछ बताया नहीं था कि वो हमें लेकर कहाँ जा रही है, साक्षी ने सुबकते हुए कहा। रावी उस महल में ही मौजूद थी और उसकी जान जा चुकी थी। एक लंबे अरसे के बाद प्रतापगढ़ में सब कुछ सही हो गया था। अभिमन्यु सहित जिसको भी इस बारे में पता था वो काफी खुश थे, तो बाकी लोग इस घटना से गमगीन थे, जहां उन्होंने अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य को खो दिया। लगभग एक महीने बाद दिल्ली के एक 7-स्टार होटल में अभिमन्यु और तपस्या के साथ पार्थ और उन्नति की रिसेप्शन पार्टी हो रही थी। सब कोई काफी खुश था। वो सब प्रताप सिंह और महल में हुए हादसे को भुलाकर आगे बढ़ रहे थे। पार्टी में तपस्या के पापा नमन सिंह अपने भाई रमन सिंह और उसके परिवार से काफी वक्त बाद मिले। उन दोनों के बीच का मनमुटाव भी ठीक हो गया था। तुमने इतने साल बेवजह ही गवा दिए छोटे, बाबूजी तुमसे नाराज थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे भी दूर हो जाओ। तुमने तो मुझसे भी सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए। ये तो अच्छा हुआ जो बच्चों के जरिए वापस मिल गए, रमन सिंह ने उन्हें गले लगाकर कहा। अपने गुस्से में मैं भूल गया था भैया, पर अब सब ठीक हो गया है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नमन ने खुश होकर कहा। इतने सालों बाद साक्षी का पति रोहित भी वहां आया था। उन दोनों के बीच के संबंध अच्छे नहीं थे, पर इतने सालों बाद उसे वहां देखकर साक्षी को अच्छा महसूस हो रहा था। उर्मिला देवी और रविंद्र प्रताप सिंह उसे समझाने के लिए दूसरी तरफ लेकर आए। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारा और साक्षी का तलाक करवाकर उसकी शादी कहीं और कर दें, रविंद्र प्रताप सिंह ने अपना फैसला सुनाया।
हाँ, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम दोनों की शादी को 3 साल हो गए, पर शादी के एक महीने बाद ही तुम कनाडा चले गए थे। दोनों के बीच खास बातचीत भी नहीं होती, तो यही सही रहेगा। अगर तुम्हें वहाँ कोई लड़की पसंद है तो बता दो, हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। उर्मिला ने भी उनकी बात पर सहमति जताई। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत है? रोहित उनके फैसले से काफी हैरान था। उसने साक्षी की तरफ देखा, जो सबके सामने खुश होने का दिखावा कर रही थी। उर्मिला ने उसकी नज़रों को पढ़ते हुए कहा, बेचारी साक्षी भी इतने सालों में खुश होने का ड्रामा करते करते थक गई है, वो भी खुशियाँ डिजर्व करती है। उर्मिला ठीक कह रही है, चलो इन सब को छोड़ो और बताओ कि तुम्हें कौन पसंद है, ताकि हम तुम्हारे बारे में भी आगे सोच सके। रविंद्र प्रताप ने बातों ही बातों में उसके दिल की बात जानने की कोशिश की। मुझे कोई पसंद नहीं है माँ, रोहित ने झुंझलाकर जवाब दिया। जानती हूँ तुम्हारे दिल में इस बात का गुस्सा है कि तुम्हारी अरेंज मैरिज क्यों हो गई। शादी से एक हफ्ते पहले ही तुम्हें साक्षी को मिलाया गया, और इतने कम समय में तुम्हें उसे जानने का मौका भी नहीं मिला। पर अभी भी देर नहीं हुई है, तुम दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हो, उर्मिला ने कहा। उर्मिला और रविंद्र प्रताप सिंह उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रोहित ने साक्षी की तरफ देखा, वो काफी दिनों बाद उसे देख रहा था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करने की सोची। भले ही उन्नति और पार्थ की शादी जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन वो दोनों काफी खुश थे। तो वहीं गौरव और हेज़ल ने अपने दिलों की बात एक दूसरे को बता दी थी। उन सबको खुश देखकर अभिमन्यु और तपस्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो क्या सोचा है मिस चंद्रवंशी, मेरे साथ मेरे छोटे से क्वार्टर में एडजस्ट कर लोगी, या तुम्हें वापस लंदन जाकर अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करनी है? अभिमन्यु ने तपस्या के चेहरे के बालों को हटाते हुए कहा, एजुकेशन भी जरूरी है और तुम भी, क्यों ना दोनों को एक साथ तुम्हारे साथ कम्प्लीट किया जाए। मैं अपनी स्टडी लंदन के बजाय दिल्ली से कर लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में रह पाएंगे। और तपस्या ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और सबकी नज़रों से छुपकर उसके गाल पर हल्का सा किस किया और आगे कुछ कहने की क्या ज़रूरत है। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। एक लंबे समय के बाद ही सही, प्रतापगढ़ के महल ने इतनी अनहोनियों के बाद इश्क की दास्तान लिखी दी, अभिमन्यु और तपस्या के इश्क की दास्तान, जो मुकम्मल हो गई थी।